अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यस्ततीउना, हाँ नहीं वो कर सकते, कौन नहीं कर सकते, या बुत या कब्र वाले। और यस्ततीउन का रूट क्या है, त्वा वाव आइन, तो अन जिसे है, लहुम उनकी, लहुम इधर कौन है, जो मांग रहे हैं, जो उस कब्र पे जाके कुछ मांग रहे हैं, हाँ जो लोग बुतों से मदद मांगते हैं वो बुत, तो वला अनफुसहुम यंसुरून, यहाँ अनफुसहुम कौन है, बुत खुद, या वो कब्रों में जो मुर्दा लोग हैं कि वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ कोई कर सके तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने ऊपर लें, हम सो रहे हों, कोई हमारे ऊपर मिट्टी डाले तो सोए रहेंगे, हड़बड़ा के उठ जाएंगे ना, हम सो रहे हैं एकदम हमारे मुंह पे कोई कंबल डाल दे घबरा जाते हैं ना। अब आप सोचिए एक शख्स है, इमेजिनेशन में लाएं कोई भी बहुत नेक शख्स, ज़िंदगी भर बहुत अच्छे काम किए, दुआएं भी मांगते थे अल्लाह से, अल्लाह की बात भी मानते थे, ठीक है उनका फैज़ था, अब वो फौत हो गए, कब्र में चले गए, कोई भी, आप बताइए कि जब एक बंदा मरता है सबसे पहले लोग क्या करते हैं, उसकी आंखें बंद करते हैं, फिर आमतौर पर देखा गया है कि उसके पाँव की दोनों की उंगलियों को सीधा जोड़ के ना तो रस्सी से डोरी से बांध दिया जाता है, क्योंकि मरने के बाद जिस्म सख्त हो जाता है ना, तो फिर जिस शक्ल में हो जाए वैसे ही होता है, उसकी टांगें सीधी कर दी जाती हैं, सर सीधा कर दिया जाता है, अब ये उस वक्त वो कुछ ना करें। फिर उसके बाद आप देखिए कि लोग उनको गर्म पानी से नहलाते हैं, बेरी के पत्तों से, कुछ नहीं किया उन्होंने, हिलाएं हिलाएं लोग पेट में हाथ फेर के उनके जिस्म की गंदगी निकालते हैं, वो कुछ ना कर सके। फिर लोगों ने उनको 3-4-5 कपड़ों के लपेटा, चादरों में ख़ास तरीके से उनका पूरा मुंह बंद कर दिया, कफन लपेटते हुए देखते होंगे बोरी की तरह बंदे को बांध देते हैं अंदर। फिर उसके बाद आप देखिए लोग उनको कंधों पे उठा के ले गए, वो कुछ ना कर सके। फिर कब्र खुदी, इतनी मनोमट्टी के अंदर उनको डाल दिया, वो कुछ ना कर सके। अगर उनके अख्तियार में कुछ होता तो सबसे पहले तो वो खुद को कब्र से निकालते ना, लेकिन वला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह करे वो बेचारे तो अब अपनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्म और रूह का रिश्ता टूट गया, रूह चली गई ऊपर, जिस्म तो मट्टी का एक बुत है, जैसे ये माइक अपनी जगह पड़ा हुआ है, मरने के बाद मैयत इस तरह अपनी डेड बॉडी की शक्ल में हमारे सामने होती है, असल उसकी सारी फीलिंग, उसका सब कुछ तो चला गया। अब कोई अक्लमंद है, मिसाल देती हूँ कि ये माइक जो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात तकरीबन इस्तेमाल होता है, इसमें से कुरान की आवाज़ें आती हैं, कोई एक बंदा जो ये पढ़ना तो ना चाहे सीखे ना, कि बस ये माइक मुझे दे दें, क्यों ये बड़ा बरकत वाला हो गया, क्योंकि इसमें दिन रात कुरान चलता है, भाई आप क्या करेंगी, वो कहेंगी बस मैं इसको अपने घर रख लूँगी जाके, और इसके आगे बैठ के कहूँगी ए माइक तू ये कर दे, माइक तू वो कर दे, तो नहीं करेगा ना। अकल से सोचे ना, अगर हम सिर्फ समझ बूझ से सोचे ना, तो हमें शिर्क की कोई दलील समझ नहीं आती। अल्लाह ताला कहते वाइन तदुहुम इलल हुदा, अगर तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ, ला यत्तबिउकुम, कभी भी उसकी पैरवी नहीं करेंगे। लोगों को जब हिदायत की तरफ बुलाया जाता है, आओ ये कुरान पढ़ो, अल्लाह के बारे में पढ़ो, उसकी कुदरत के बारे में पढ़ो, उसके नामों पे गौर करो, तो ये नहीं करते, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें फोकस होना पड़ता है, हाँ। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें किसी बुज़ुर्ग से कुछ लेना देना कुछ करना, तो सारे चल पड़ते हैं, का सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम पर, अदाउतुहुम, तुम इनको बुलाओ, अम अंतुम सामितून, या तुम चुप रहो, यानी चाहे तुम इनको पुकार लो, इनको कुछ कहो, दावत दो, या तुम चुप करके बैठे रहो, ये नहीं मानेंगे। सामितून, सामित की जमा, स्वात मीम ता, समत कहते हैं खामोशी को। क्या पता चला कि अपनी मर्जी, आप जो मर्जी करते रहे, मैं इस माइक के सामने घंटों बोलती रहूं, मैं बोलूं या मैं चुप रहूं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अल्लाह ताला मिसाल देते हैं कि जो लोग ऐसे शिर्किया काम करते हैं उनका हाल क्या है, इन अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, बेशक जिनको लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, इबादुन अम्सालुकुम, तुम्हारे जैसे बंदे हैं, भाई ठीक है नेक थे जो भी थे, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं जैसे तुम हो, फदूहुम, जाओ फिर पुकारो उनको, फल यस्तजीबू लकुम, फिर चाहिए कि वो तुम्हारी बात का जवाब दें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। देखिए यहाँ ये हो रहा है ना, फदू हम, बस पुकारो इनको, ज़ाहरा से लग रहा है हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन असल में डांटा जा रहा है कि जाओ फिर पुकार के देख लो, अगर तुम्हारी बात सुनते हैं तो फिर देखना। कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुरान पेश करे और सिर्फ इतनी सी आयत पेश कर दे कि कुरान तो खुद कहते हैं बुज़ुर्गों से मांगो, और कई लोग जो कुरान से साबित करते हैं ये सब कुछ, वो यही आयतें तो दिखाते हैं, देखो जी अल्लाह कह रहा है कि तुम पुकारो उनको, फदू हम, हाँ तो हुक्म नहीं दिया बल्कि कहा पुकार के देख लो। आप देखिए कि कौमे नूह से लेके मक्का के लोगों ने जितना भी शिर्क किया ना, वो मरे हुए नेक लोगों के बुत थे। ये जहन में रखिए, हर बुजुर्ग के पीछे, हर बुत के पीछे कहानी थी कि अपने दौर के ये कोई नेक लोग थे। हमारा हाल क्या है आज, मुसलमानों का शिर्क तो और ज्यादा गया गुजरा है कि बुत बनाए बगैर ही हम इंसानों को पुकारने लगते हैं। आप देखिए कि वो लोग नाम रखते थे अब्द शम्स, सूरज का बेटा, हाँ सूरज का बंदा। फिर इसी तरह अब्द बुद, वो तो उनका बुत था, हाँ अब्दुल उज्जा, उज्जा की बेटी, या अब्दुल उज्जा का बेटा। आज हम दाता, गौसे आजम, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, इस तरह के काम जो सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह की वो सारी सिफात जो है हमने लोगों में पेश कर दी, तो लिहाजा अल्लाह ताला अब हमें एक मियार देता है, हम सब अपने ऊपर ले, किसी दूसरे पे कोई तनकीद की ज़रूरत नहीं, किसी को मत सोचें, सिर्फ ये सोचें कि जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमें कुरान क्या क्राइटेरियन देता है, किसी से कुछ मांगे या ना मांगे, इसका क्या? अलहुम रजुलुन यमशू नबी, क्या ये पाँव रखते हैं कि इनसे चले, यानी कब्र में सोया हुआ या मरा हुआ बुजुर्ग, या पत्थर या मट्टी का बुत, क्या उसके पाँव हैं कि वो चले? नहीं है, पाँव होंगे भी तो नहीं चलेंगे। आप मूर्तियां देखा करें हिंदू धर्म में जो होती हैं, पूरे पूरे सजे संवरे बुत होते हैं, लेकिन जहाँ रखो वहीं पड़े रहते हैं। हाँ अम लहुम ऐ नहीं यब्तशू नबीहा, क्या इनके हाथ हैं जिसके साथ ये पकड़े, यदि तुम गिरने लगे तो क्या किसी बुत के हाथ हैं जो आके पकड़ ले? अम लहुम आयुन युबसिरून नबीहा, क्या इनकी आंखें हैं कि ये देखें उससे? अम लहुम आज़ान यस्माऊ नबीहा, क्या इनके कान हैं कि ये इससे सुने? अब किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, मतलब ये कि नहीं है। तो कहा कुले दो शुरका अकुम, कह दीजिए पुकारो अपने शरीकों को, सुम्मा की दूनी फला तुनज़िरूनी, फिर मेरे खिलाफ तुम साजिश करो और फिर मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो। ये अल्लाह किसको कह रहे? मुशरिकों को कह रहे कि तुम्हें मेरे सिवा दूसरों से मांगना है ना, जो अपने सारे बुतों को लेकर उनके साथ मिलके मेरे खिलाफ कोई हमला करो, आओ मेरी खुदाई में हमला करो, कोई मुझे मारने की कोशिश करो, मुझे बिल्कुल मोहलत ना दो। मुराद चैलेंजिंग स्टाइल है कि तुम करना चाहो तो कर लो, और नबी सल्लम को कहा जा रहा है। होता क्या कि जब आप इस मौजू पे बात करते हैं ना, तो कुछ लोग जो ख़ानदानी जद्दी पुश्ती इसी चीज़ में होते हैं ना, वो ये बात कहने वाले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें की ना, तो मक्का वाले आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात करता है, हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे ख़ानदान की रिवायात तोड़ रहा है, तो थ्रेट फील करते थे। तो अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं जाओ इनसे कहो कि मेरे खिलाफ़ साजिश करो। इससे एक बात पता चलती है, सच्चे मुवाहिद को कभी कोई नुकसान नहीं दे सकता। बस दफ़ा लोगों के अपने मुफादात होते हैं ऐसे कामों में। आज भी ऐसी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं कि जो कब्रों के सिलसिले हैं पाकिस्तान में, बड़े लंबे चौड़े, पूरी पूरी जागीरें बन चुकी हैं। एक मैंने किसी का वाक्य पढ़ा था अखबार में, कोई एक आर्टिकल आया था, मुल्तान के करीब को एक दरगाह है, तो उसके कुछ जो पुजारी और वहाँ के टेक केयरर्स होते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू आया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारा एक पूरा ख़ानदान है, हमें किसी को कोई और कारोबार करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा इस दरगाह से कारोबार चलता है। कैसे? कहा वो जो बाहर चादरें चढ़ाने की दुकान है, जहाँ से लोग चादर खरीदते हैं, वो हमारे भाई के, वो चादर बेचते हैं, लोग चादर बेच लेते हैं, पैसे देते हैं, वही चादर लोग अंदर जाके चढ़ाते हैं। कभी उन्होंने कहा तुमने सोचा कि ये चादरें जो इतनी चढ़ती हैं, वो जाती किधर हैं? आप देखें ना, दिन में अगर 40 लोग भी जाके इस कब्र पे चादर चढ़ाते हैं, तो 40 चादरें कब्र पे तो पड़ी होंगी ना, तो वो तो कब्र ही भर जाए उससे। तो उन्होंने कहा क्या होता है? कहा जूं ही कोई चढ़ा के जाता है, हमारे अपने ही खानदान का कोई बंदा आता है, वो चादर आराम से उठा के दोबारा तय करके दुकान पर भेज देता है। अच्छा जी, खाने नहीं पकाने की जरूरत, कहते देखें ये जो लंगर खुलता है, हमारे यहाँ पूरा ख़ानदान खाता है। यानी उन्होंने साबित किया हुआ था कि इस एक दरगाह से हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है, हम किसी और को कोई काम करने को क्यों कहें? तो आप देखिए कि पीछे माली मुफादात होते हैं, नजराने और खाने पीने और लोगों में बड़ा बनना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जाओ तुम मेरा कुछ बिगाड़ो। एक मारूफ, बहुत मारूफ राइटर है, अमीर हमज़ा, तो वो क्या है, सही अकीदा है, तो वो कब्रों पे जाते हैं, लोगों को तो यही लगता है कि ये कब्र पे आए हैं जैसे हम आए, तो ये वहां की कहानियां देखे, वो कहते थे बदल कर भेस फकीरों का तमाशा अहले करम देखते हैं, यानी लोगों को देखो कि कर क्या रहे। ये भी एक अच्छी आदत होती है कि दुनिया में देखो हो क्या रहा है। तो ये वहां जाके ना फिर लोगों से जो देखते सुनते हैं ना, तो एक तो उसकी कहानियां लिखते हैं और फिर जो लोग होते हैं उनको ये तरबियत करते हैं उनकी। इनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी, मेरा ख्याल है आसमानी जन्नत और बाजारी जन्नत, कुछ इस तरह का नाम था उसका। यकीन करें, यकीन नहीं आता है इतने ज़्यादा वहाँ होश गुम करने वाले वाकयात है कि पढ़े लिखे समझदार लोग कब्रों पे आके जो अजीबो गरीब हरकतें करते हुए दिखते हैं, उसको देखकर तो वाकई एहसास होता है कि इल्म कितनी बड़ी रोशनी है। हो सकता है कि ये बात आप किसी से घर जाके कहें तो लोग आपके ऊपर भी कोई फतवा डाल दें कि जी अच्छा जी ये तो बहुत मुश्किल है, दिस एंड दैट, और ये कैसे होगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो लोग दीन से दूर हैं फिर वो अपने इन कामों में खुश कितने हैं। कुरान नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे 5 वक्त में, और जब वो सुनेंगे ऐसी बातें तो उस पर लगे रहेंगे। तो अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं जब आप इनको बुलाते हैं ये सुनते नहीं, पकड़ नहीं सकते, थाम नहीं सकते, तो इनको कहो कि जाओ फिर मेरे खिलाफ कोई काम करो। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़ल अल किताब, मेरा दोस्त अल्लाह, यानी हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाएगा जिसने किताब नाजिल की, वहुवा यतवल्लस सालेहीन, और वो सालेहों का दोस्त है, यानी मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम मेरा जो भी करना चाहो कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वल्लज़ीन तदून मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम, और जिनको तुम पुकारते हो उसके सिवा वो कुदरत नहीं रखते तुम्हारी मदद की। वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना अपनी नफ्सों की वो मदद करते हैं। बिल्कुल वही बात तकरार के साथ आ रही है, एम्फेसाइज किया जा रहा है इस बात की अहमियत को। वइन तदउहुम इलल हुदा ला यस्माउ, हाँ जब तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाते हो ला यस्माउ, पीछे क्या था, वइन तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, वो तुम्हारी बात नहीं मानते, कहते तुम वहाबी हो, हाँ तुम पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं लोग कि ये जी कुरान पढ़ने वाले जी हैं। आप कहते कि ये जो लफ्ज़ वहाबी है ये कहाँ से आया है, सुनाऊँ आपको इसकी कहानी। आप देखिए कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलविदा के मौके पे ये कहा कि आज शैतान खाना काबा हरम में बुत परस्ती से मायूस हो गया, तो उसको यकीन है कि अब आज के बाद जहाँ बुत परस्ती नहीं आएगी, लोग और गुनाह करेंगे लेकिन बुत नहीं पूजेंगे। फिर क्या हुआ, वक्त के साथ इस्लाम का और अरूज हुआ, पूरा अरब अजम जो था बुतों से खाली हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सहाबा का दौर गुजरा, ताबेइन का गुजरा, कुछ अरसा ज़्यादा गुजरा ना, तो सऊदी अरब की हदूद में भी लोगों ने छोटी छोटी कब्रें और मज़ार बनाने शुरू कर दिए। ये एक दौर ऐसा गुजरा, आप हिस्ट्री पढ़े मक्का की जाके। अब जब छोटी मोटी कब्रें और इस तरह के चीज़ें शुरू हो गई ना, तो एक आलिम थे, उनका नाम था इमाम अब्दुल वहाब रदी अल्लाह रहमहुल्ला, अब्दुल वहाब अल्लाह का बंदा, वहाब अल्लाह का नाम है। ये उठे, इन्होंने फिर पूरे सऊदी अरब में ये मूवमेंट चलाई थी, लोगों को साथ लेके जमा किया कि देखो तुम उस सरजमीन पे अब शिरक साजी कर रहे हो कि अल्लाह के नबी ने फतह मक्का के मौके पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा अपने दामाद को कि जाओ हर अकेली कब्र को ख़त्म कर दो, ऊंची कब्र को गिरा दो, बराबर कर दो, और हम लोगों ने फिर ये शुरू किया। इन्होंने वहाँ फिर काम जब शुरू किया तो लोगों के अंदर अवेयरनेस शुरू हुई, और फिर जब तुर्कों की हुकूमत आई है तो उसके बाद फिर ये सारे कब्रें फिर दोबारा टूटी थी। अब आप सोचिए कि जब दोबारा मक्का से बुत परस्ती ख़त्म हुई और ये कब्र परस्ती ख़त्म की गई, तो वो किन के थ्रू हुई, इमाम अब्दुल वहाब के जरिए हुई। उस वजह से आज तक जो बंदा कब्र परस्ती के खिलाफ बात करता है लोग उसको वहाबी कहते हैं। बात समझ आई, कभी नाम भी नहीं आपने सुना होगा इससे पहले हमारे मुंह से वहाबी का, यानी इमाम अब्दुल वहाब का। लेकिन ये बहुत बड़ी शख्सियत है अपने दौर की, ना ये खुद को वहाबी कहते थे लेकिन लोगों ने इनको मशहूर कर दिया, हाँ जी तुम वहाबी हो क्योंकि तुम कब्रों के खिलाफ हो। तो जिनको नहीं पता होता बेचारों को, भोले भाले लोग हैं, इधर उधर की बातें सुन के वो ऐसी बातें करने लगते हैं। अल्लाह कहते हैं इसकी पहचान देख लो, जिन लोगों को कब्र परस्ती या इस किस्म का आसान बाजारी दीन अच्छा लगता है ना, वो हिदायत की दावत नहीं सुनते हैं, आजमा के देख ले। आप उन्हें कहे हमारे घर दर्स है, कहते हैं वो क्या होता है, क्लास शुरू हो गई है वो क्या होती है, हाँ ख़त्म है बैठते हैं ज़रा थोड़ा पढ़ते हैं फिर खाएं पिएंगे, तो आप देखेंगे पूरा हॉल भर जाएगा। ये फ़र्क होता है, देखिए, जब मुंह को दूसरी चीज़ लगती है ना, तो नेचुरल खाना अच्छा नहीं लगता। ये कुरान लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता? जब उनको दीन के नाम पे टोटके मिलते हैं। आप यहाँ के, मिसाल देती हूँ आपको कि मैं आपको यहाँ बुला रही हूँ, हम कुरान पढ़ते हैं सुबह से, आप जब से आके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या कुरान या हदीस या पढ़ रहे हैं ना, या आप तजवीद कर रहे होते हैं, या आप कोई रूट वर्ड्स कर रहे होते हैं, या आप ग्रुपिंग करते हैं, या कोई सब्जेक्ट करते हैं, या कुरान, यही कुछ है ना इधर। अब हम कह नहीं, आप तो सुबह से बैठे हैं, बोर हो जाएंगे, लाओ टीवी खोलते हैं, कोई कॉमेडियन को वो आपको ज़रा मूवी दिखाते हैं, क्या हर्ज, आप खुश होंगे। या हम कहें ऐसे करें, हर महीने यहाँ एक कॉमेडियन को बुला लेते हैं, कोई एक टीवी फनकार को बुला लेते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ा आए। पता होगा क्या, वो बाहर रिसेप्शन तक जगह नहीं रहेगी लोगों की, फ़ायदा क्या? अगर हमने दीन के नाम पे भी लोगों को वही दिखाना है जो लोग दुनिया के नाम पे दिखा रहे हैं, तो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? और ये एक बहुत गलत फैसला होता है जब दीनदार इस प्रेशर में आ जाते हैं कि लोग नहीं आते, लोग नहीं सुनते, तो कहते हैं फिर इस तरह से कोई टोटका करो, कोई ऐसा शोशा छोड़ो, फिर हम करते हैं। और जो बीच बीच के माशरे में लोग होते हैं ना, जो बस सतही सा दीन रखते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं देखा ये दीन ठीक है ना, फिल्में भी देखो, ड्रामे भी देखो, गाने भी सुनो, और नमाज भी पढ़ो, और रमज़ान में तरावियां भी पढ़ेंगे। इस किस्म के ठोसलों वाला दीन लोगों को अच्छा लगता है। अल्लाह करे इनको हिदायत की तरफ बुलाओगे, ला यस्मो, हरगिज़ नहीं सुनेंगे। व तराहुम यंजुरूना इलैक, तुम इनको देखते हो कि ये आपकी तरफ देखते हैं। आप कभी किसी बुत को देखे ना, तो ये 3 डायमेंशनल होता है, जैसे आजकल 3D तस्वीरें चलती हैं ना, आप जिधर से भी देखें ना, आपको लगता है ये तस्वीर वाला आपको देख रहा है। बुत भी ऐसे ही होते हैं। अल्लाह कहते हैं तुम इनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें देख रहे हैं, हालांकि वह हम ला युबसिरून, वो नहीं देख रहे होते। करें क्या, इतना सुन के गुस्सा आ गया, ऐसे लगता है हाय लोग इतना कुछ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला गुस्से को ठंडा करा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। और यहाँ से अब सूरत का बिल्कुल इख्तिताम है, और मक्की सूरतों में से अक्सर सूरतें इसी तरह के एंड पे ख़त्म होती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुताब मुखातिब किया जाता है, और साथ ही उनको कहा जाता है कि अब आप इन लोगों के साथ कैसा मामला करो। असल में ये जो आयत आ रही है, ये बड़ी अहम है। आला अखलाक के 3 सुनहरी असूल हैं, यानी 3 गोल्डन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अच्छे अखलाक के। हम इस आयत को डिफरेंट एंगल से देखेंगे, पहले एक सतही साइज का तर्जमा करते हैं। फरमाया करो क्या इन लोगों के साथ जो ऐसे काम कर रहे हैं, खुजिल अफवा, दरगुजर करो, माफ़ कर दो। और दूसरा काम क्या करो, नंबर 2, वामुर बिलोर्फ, नेकी का हुक्म दो। तुम लोगों को पढ़ाते रहो, सिखाते रहो, उनके शऊर बेदार करते रहो, टकराव पैदा ना करो, हाँ बदला ना लो इनसे। और तीसरा काम क्या करो, वारित अनिल जाहिलीन, जाहिलों से हरास करो, इनके मुंह ना लगो, कॉन्ट्राडिक्शन ना पैदा करो, हर वक़्त झगड़े ना पैदा करो। लेकिन अगर इन 3 कामों के करने के दौरान व इम यन्ज़ग़न्नक मिनश शैतानी नज़्ग़ुन फस्तईस बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम, और अगर शैतान आपको बहका दे, वसवसा डाल दे, तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए, क्योंकि वो खूब सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ अल्लाह ताला ने गुनाहगार और मुशरिक और गलत चीज़ों में पड़े हुए लोगों के साथ एक दाईये दीन को क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए वो बताया गया। कैसे लोगों के ख़िलाफ़ बातें ना करो, ऐसे लोगों को समझाओ, इल्म दो। मसलन अभी हमने इतनी बातें सुनी, तो आप क्या ऐसा करते हैं, कल किसी दरगाह में जाते हैं और वहाँ जाके पत्थर फेंक के आ जाते हैं और उन लोगों को मार के आ जाते हैं? नहीं, देखिए कि जो तरीका है ना दीन का, वो ये है कि लोगों को तालीम दो, तस्किया करो। झगड़ों से बात नहीं बनती, लोग अपने आप को इस तरीके से नहीं कर पाएंगे ठीक, जब तक कि आप उनको हकीकत के साथ इस चीज़ की तरफ नहीं लेके जाएंगे। इखलाक़े हसना की जामे तरीन आयत है, और रिवायत में आता है कि ज़बूर के अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मैसेज दिया गया था ना, वो भी इसी आयत वाला मैसेज है। लफ्ज़ कोट करना चाहें तो कर सकती हूँ, लेकिन मफहूम बिल्कुल यही है कि लोगों से दरगुजर करो। आज हमारा हाल क्या है कि दीन पे आने वाले लोग जो दीनदार हैं, वो ऐसे लोगों के साथ हाश होने लगते हैं। देखिए, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो है कि जो दीन सीखना ही नहीं चाहते, जिनको कोई पकड़ ही नहीं है, अल्लाह की फिक्र ही नहीं है, उनसे तो कीजिए एराज, जो कर रहे हैं करने दीजिए। تنقید کرنا، ان پہ نام لے لے کے باتیں کرنا، ٹونٹ کرنا، کفر کے فتوے دینا، فلاں مرتد ہو گئے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اپنے کام سے کام لیجئے. مجھے اس آیت میں سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے نا وہ وامر بالعرف ہے، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے معروف پھیلاتے رہیں، لوگوں کو قرآن کے نور سے جوڑتے جائیں، تعلیم دیتے جائیں. کوئی غلط کام کسی کا دیکھے تو خذلف جانے دیجئے. بس آپ دیکھیں یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں، تو کیا آپ یہاں قرآن پڑھنے کے بعد اب ہر گناہ چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں. آپ کا کوئی گناہ سامنے آتا ہے، آپ کی کوئی غلط حرکت دکھتی ہے، تو اس وقت ہاں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ عفو، جانے دو، پیچھے کرو. لفظی معنی عفو کا ہوتا ہے مٹا دینا، بھلا دینا. عین فا و اس کا روٹ ہوتا ہے عفو کا، درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا. اسی طرح اس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، سہولت دینا، جس کو آپ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دو لوگوں کو، آسان معاملہ کرو. کب، کس کو، کہاں، کتنا معاف کریں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پیغام دے چکے ہیں. نیا نیا دین کی طرف جاتا ہے نا، اس بندے کو بہت اگنور کرنا چاہیے. وہ غلط کام کرے کوئی بات نہیں، وہ غلط بات کرے کو، وہ غلط چیز پہن لے کوئی بات نہیں، وہ نئے آنے دیجئے. ہمارے یہاں بعض دین کے نام پہ اتنی ریجیڈیٹی ہوتی ہے کہ نئے نئے آنے والے کو، جو بیچارہ پہلے ہی خود سے بھی لڑ رہا ہے، جہاد بھی نفس کر رہا ہے، سوسائٹی کے پریشر سے نکل کے آ رہا ہے، اسی طرح اس کے اندر اور بھی کئی قسم کے بوتے ان کو توڑ رہا ہے، اوپر سے دیندار آتے ہی ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں پہننا، یہ نہیں کھانا، ایسے نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ نئے آنے والوں کو ویلکمنگ رہیں، وہ کسی حال حلیے میں آ جائیں، اٹس اوکے، شکر کرو آگے، اب وامر بالعرف کرو اس کے ساتھ. اور اس کی کچھ جہالت کی چیزیں تو ہاری دن الجاہلین، لیکن جو بندہ بات سن چکا ہو، سمجھ چکا ہو، دین کا مزاج سن چکا ہو، اس کے ساتھ حذلف کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، یہ جو کر رہا کرنے دو، یہ جو پہنتا ہے پہننے دو. مثلا آپ دیکھیں نا، ہم یہاں آئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے سیل فون نہیں رکھنا کمرے میں، کلاس میں آنے کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں. لیکن اب نیا بندہ جو آج فرسٹ ٹائم آیا ہے یا شروع شروع میں آنا ہوا ہے، اگر وہ سیل فون لے آئے اور اس کا فون بج جائے، تو کیا ہمیں مائک پہ اس کے خلاف باتیں کرنی چاہیے؟ نہیں. لیکن اب یہی حرکت آپ میں سے کوئی کرے جو پچھلے کئی مہینوں اور کئی سالوں سے ادھر آ رہے ہیں، تو ان سے بالکل نرمی نہیں کرنی چاہیے. اسلام کا یہی مزاج سمجھیے کہ نیو کمرز کو ویلکم کرو اور پرانوں پہ سختی کرو. ہمارا حال بالکل ہی الٹ ہے. جو نئے ہو جاتے ہیں، نئے آتے ہیں نا، ان پہ ہم روپ ڈالتے ہیں، ہم تو یہ ثابت کرنے کے لیے جی کہ یہاں بہت رولز ہیں، ہم بہت سختی کرتے ہیں. اور جو ذرا پرانے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارے لیے سختی ہوگی، جی ہم تو ویسے ہی اپنے ہیں. بالکل الٹی گنگا. میں کہتی ہوں کہ خوب آنکھیں دکھاؤ، جو پرانے لوگ ہیں ان کو ایک ایک چیز سے پرکھو. اسی یہی رول بچوں کی پیرنٹنگ میں بھی ہے. چھوٹے بچے نا اگنور کیجئے، اٹس اوکے، نو پرابلم، چھوٹا بچہ ہے. لیکن بڑا بچہ اگر غلط حرکت کرے، تو اس کے ساتھ ذرا کھل کے بات کیجئے. ہمارا حال بالکل الٹا. چھوٹے بچے کو مار بھی دیتی ہیں مائیں کبھی کبھی، اور بچے ذرا جوان ہو تو کہتی نہیں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ جو ہیں ہم سے پھر بگڑ جائیں گے، نہیں ہوں گے. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اعراض کیجئے، ان کو پیچھے کر دیجئے، لوگوں کو علم دیجئے. اسی طرح اف کے معنوں میں ایک اور بڑا خوبصورت معنی آتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا، ایکسپیکٹیشن نہ لگاؤ لوگوں سے، بہت ہائی ایکسپیکٹیشنس نہ کرو. مثال ہے، میں آپ سب سے ایکسپیکٹیشنس لگا لوں ہائی، کیا کہ آپ تو بس اب بالکل نیک پاک ہو کے اور آپ تو بہت ایکسیلنسی کے درجے پہ آ گئی ہیں. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر میں آپ سب سے ہی ایکسپیکٹیشن لگاؤں گی نا، تو مجھے بعد میں دھوکا ہوگا. آپ ابھی مختلف معیار پہ ہیں، ابھی آپ میں کسی کا تقوی پاؤں تک ہے، کسی کا گھٹنوں تک ہے، کسی کا کمر تک ہے، کسی کا ابھی اللہ رحم کرے پاؤں کی انگلیوں ہی تک ہے، کسی کا ہو سکتا ہے سر تک بھی پہنچ چکا ہے. تو یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے، سہولت سے جو لوگ کر رہے ہیں کام، اس کو کرنے دیجئے، شکوہ نہ کیجئے. لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے. اور بعض دفعہ یہ کرنا مشکل بڑا لگتا ہے، غصہ آتا ہے نا، ماں کو بچے پہ کتنا غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کو 10 دفعہ سمجھایا، یہ پھر وہی کام کر رہا ہے. تو کہا بھائی مَيَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھا کرو. جب تمہیں اپنے چھوٹوں پہ غصہ آئے، ان کی بار بار کی غلطیوں پہ تمہیں غصہ آئے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. یقین کریں یہ خوش اور مطمئن رہنے کا راز ہے. اپنی تربیت خود کر لیں، آپ اپنے معاملات میں لوگوں, عام طور پہ یہ تو ایک ہم نے دینداروں اور دین کی طرف آنے والوں کے ساتھ بات کی ہے نا, لیکن عام زندگی کے معاملات میں بھی یہی رکھیے, گھر میں شوہر سے خذ لف, ہو گئی غلطی ان سے خذ لف, بیوی سے غلطی ہو گئی خذ لف, ساس سے غلطی ہو گئی خذ لف, بہو سے ہو گئی خذ لف, وار مر بالعرف بیٹھ کے بات کر لو, اچھے طریقے سے بتا دو بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی, اور ایک دوسرے کی شارٹ کمنگس اور ان کی غلطیوں سے آرے دنل جاہلین, جہالت سے نہیں پڑھنا. اب دیکھیں اگر ہم اپنے گھر کی ٹریش کین کو کھولنا شروع کر دیں, دیکھیں ذرا اس میں ہے کیا, تو وہی بو جو اس ٹریش کین کے اندر تھی نا وہ سارے گھر میں پھیل جائے گی. تو اعراض زندگی کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے, کلیشنگ نہیں ہونا. آپ روڈ پہ جاتے ہیں, ہم اسی اصول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اپنی لین میں رہتے ہیں, اور جہاں کوئی آپ سے الجھنے لگتی ہے گاڑی یا بریک لگا لیتے ہیں یا آپ انڈیکیٹر دے کے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. اگر روڈ پہ چلنے والے لوگ اعراض نہ کریں گے نا تو دن میں بیسیوں ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. انسانی معاملات میں بھی اسی طرح کے معاملے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے دل میں لوگوں کی بڑی جگہ ہوتی ہے, آپ کسی کو بہت اعلیٰ دل میں رکھتے ہیں خانے میں, ہو سکتا ہے وہ اچھا کام نہ کریں, خرابی کریں, آپ کیا کریں, اس کو پکڑ کر دوسری طرف نکال دیجیے, دل کے خانے سے نکال دیں. ایک میں نے کہانی شیئر کی تھی ایک جگہ آج کی بات میں, کہ ایک شخص تھے تو ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, یہ میرے پاس چوڑیاں یا سونے کی ڈلی ہے, یہ رکھ کے مجھے پیسے دے دیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے یہ رسک لیتا نہیں. خیر اس نے بڑی منتیں مرادیں کی کہ نہیں نہیں مجھے ضرورت ہے, آپ میرا یہ سونا رکھ لیں, مجھے اس کے وزن کا پیسہ دے دیں, میں کچھ دن بعد آؤں گا اپنا سونا آپ کا دے کے پیسے لے جاؤں گا, پیسے دے کے سونا لے جاؤں گا. ان کو رحم آ گئے, انہوں نے پیسے دے دیے, وہ سونے کی ڈلیاں پکڑ کے گھر کے اندر کسی صف میں لا کر میں رکھ دی, انتظار کرنے لگے جب بھی آئے گا تو ہو جائے گا. وقت گزر گیا وقت گزر گیا گزر گیا, وہ آیا ہی نہ. ان کو بڑا لگا کہ وہ آیا نہیں, کہا چلو نہیں آیا ناصر میں خود ہی اسی سونے کو بیچ لیتا ہوں, بیچ کے میں پیسے اپنے لے لیتا ہوں. سونا نکالا, جا کے سونار کے پاس رکھا کہ جی اس کو مجھے پیسے دے دو. اس نے چیک کیا, کہنے لگا بابا جی یہ سونا نہیں ہے, یہ لوہا ہے, اس کی تو ایک کوڑی بھی قیمت نہیں ہے. بلنڈر ہو گیا, وہ دھوکہ دے کے چلا گیا بندہ, ان کو سونے کے بدلے میں لوہا دے کے گیا. اب کیا کیا انہوں نے, روتے دھوتے بس اس سونے کی ڈلی کو اندر کے لاکر سے نکال کے باہر کے شوکیس میں سجا دیا. یہ ہے زندگی میں آرے دن الجاہلین کا طریقہ. آپ کو کسی ایک انسان سے بہت ایکسپیکٹیشن ہوں گی, اچھی امیدیں ہوں گی, نہیں پورا اترا, بس اس کو دل کے خانے سے نکال کے وہاں رکھ دیں, ہائے بائے ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ دس, دیٹس اٹ. دل پہ نہ لگائیں, پھر آپ خوش رہیں گے. یہ جو ہم رگڑنے لگتے ہیں نا, مجھے یہ امید تھی اس نے یہ کیا, وہ میری امیدوں پہ پورا نہیں اترا, میں نے اس سے یہ سوچا تھا اس نے یہ نہیں کیا, تو یہ چیز ہم صرف خود کو خوش کریں گے, اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اب آگے ایمان والوں کی خوبیاں بتاتے ہیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, وہ لوگ جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے جب ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے چھو بھی جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں, فاذا هم مبصرون, اور اس وقت پھر وہ دیکھنے بھالنے لگتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں تقویٰ کی اصل ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. تقویٰ کیا ہے کہ ذرا سی بھی غلطی کرنے لگے انسان تو اندر کا الارم بجنے لگے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. آپ کے گھروں میں سیفٹی لاکرز لگے ہوتے ہیں, لاکس لگے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں نے سروس لی ہوتی ہے, برنکس ہے, کوئی اور کمپنی ہے, اب وہ کرتے کیا ہیں کچھ سینسرز لگا دیتے ہیں, جو ہی کھڑکی کے شیشے کو بھی کسی نے ٹچ کیا نا تو وہ اندر سے ریڈ لائٹ بلنک ہوئی, اور اگر ڈور کھولا تو سائرن ادھر بھی بجے اور ادھر کمپنی میں بھی بجے. سب کو پتہ نا, فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی آنے والا, ابھی چور گھسا نہیں, گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. بس یہی سیکیورٹی الارم ہمارے اندر کا تقویٰ ہے. جو متقی انسان ہوتا ہے نا وہ گناہ کو چکھتا نہیں, چھوتا نہیں, ٹچ نہیں کرتا, ابھی خیال آتا ہے کروں میں, دیکھوں میں, سنوں میں, بولوں میں, جاؤں میں, بس اتنے میں اندر بلنک 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 تائے ہوں, ہوش میں آ جاتے ہیں, تذک کرو. وہ ماں باپ کا ڈر نہیں رکھتے, دیکھ لو امی تو نہیں ہے, ابو تو نہیں ہے, اچھا فلان تو نہیں ہے, نہیں, تذک کرو, ہوش آ جاتی ہے, فائزہ ہم بصیرون, پھر وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں, میں ایسے کام کروں کہ کل جس کو میں نے بھگتنا ہے. اس کے باوجود وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی, ان کے کچھ دوست ساتھی رشتہ دار ضرور ہوتے ہیں جو ان کو گمراہیوں میں کھینچتے ہیں, चलो छोड़ो ना, इतना भी नहीं डरते, लो ऐसी भी तो नहीं बात, अब तुम पाकिस्तान में थोड़ी हो कि इतना डरो, और यहाँ तो कोई नहीं किसी से डरता। वो खींचते हैं, सुम्मा ला युक्सिरून, फिर वो कमी कोई नहीं करते, खींचते जाते हैं खींचते जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। ये है रस्साकशी जो इंसान की अपने माशरे और अपने दोस्तों के साथ लगी होती है। अंदर तकवा खींचता है, वो कहते हैं ना, ईमान मुझे रोके है और कुफर मुझे बुलाए। हम जब कुरान के इस दौर में पहुंचते हैं ना, 8-9 सपारे पढ़ लिए हैं, अभी 20 पीछे हैं, तो ये अंदर की कैफियत हो चुकी होती है। गुनाह करने को दिल भी जाता है, करके मज़ा भी कोई नहीं आता। यकीन करें, या तो बंदा पूरा गुनाह करके इंजॉय कर ले, या पूरा नेकी पे आ जाए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं। मस्जिद में बैठे हैं तो वो सिनेमा घर याद आ रहा है, मूवी याद आ रही है, और अगर सिनेमा घर चले गए तो खौफ आ रहा है कि हाय कोई मस्जिद का साथी ना हमें यहाँ मिल जाए। खुशी नहीं रह गई, अब खुशी एक ही चीज़ में, और अय्याक नाबुदु व अय्याक नस्तईन, इसी से बात बनेगी। फोकस्ड इंसान हमेशा खुश रहता है। हम आधे तीतर आधे बटेर, दीन के नाम पे जब लोग आधे तीतर आधे बटेर बनते हैं ना, तो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। साफ सुथरा सीधा साधा दीन लोगों को दे। यहाँ पे टॉपिक पूरा हो रहा है ये, और आगे वाली बात थोड़ी सी पलटेगी। खुलासा कर देती हूँ 3-4 छः जुमलों में, 4-6 जुमलों में, कि अभी जो हमने ये आयत सीखी है इसका खुलासा क्या है। पहली बात ये है कि न्यू कमर्स को सहूलत देनी है, दीन की तरफ नए नए आने वालों के साथ यस्सिरु वला तुअस्सिरु, बशिरु वला तुनफ्फिरु का मामला करना। हदीस के अल्फाज हैं कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल ना पैदा किया करो, खुशखबरियाँ दिया करो, उनको दीन से नफरत ना दिया करो, दिलाया करो। हाँ, फिर जो लोग दीन की तरफ आने के बावजूद अगर ढीले होते हैं, तो फिर उनसे बात समझ के ली जा सकती है, बड़े तौर पे ली जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं ना बताऊँ वो शख्स जो आग पर और आग उस पर हराम है, मुराद ये कि वो आग जहन्नुम में नहीं जा सकता। साहब ने कहा, अल्लाह के नबी ज़रूर बताइए कौन, तो फरमाया कि कुल्लु शैयुन करीबुन हैयिनुन लैयिनुन सहलुन, नरम सॉफ्ट इजी गोइंग पर्सन, यानी जिसको आप कहते हैं ना बहुत ब्लेंडेड पर्सनैलिटी, सॉफ्ट किस्म का इंसान होता है, जो कभी किसी को दुख नहीं देता, किसी को तकलीफ नहीं देता। कहा कि आग इस पर और ये आग पर हराम है। हाँ, अल्लाह का दीन नहीं, बेसिक्स नहीं बदलते दीन के, क्या 5 के लिए 3 नमाज़ें कर दो क्योंकि हदीस में आ गया आसानी पैदा करो। नहीं, मुत्तकी का तो दिल चाह रहा होता है कि मैं नमाज पढ़ूँ। इसी तरह अल्लाह के नबी की तबीयत में भी बहुत माफ़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, आगे जाके कहीं कोट कराऊंगी, कि जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि आमरनी रब्बी, 9 बातों का मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, जिसमें से एक बात जो थी वो अफ्व दरगुजर की थी। फिर उसमें दौलतमंदी और फ़कीरी की हालत में मियाना रवि रखो, बी मॉडरेट, मिडल में रहो। फिर जो मेरी नाफरमानी करे उसको माफ़ कर दो, उससे जुड़ूँ जो मुझसे कटे यानी रिश्ते ना काटूँ, उससे दूँ जो मुझे मना करे, मेरी गुफ्तगू जिक्र की हो, मेरी खामोशी गौर की हो, और मेरी नज़र इबरत की हो, और नेकी का हुक्म करूं और बुराई से रोकूं। और हकीकत है कि दीन का काम इस इन खूबियों के बगैर हो ही नहीं सकता। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा इखलाक हमारा बन जाए। अच्छा, यहाँ जो लफ्ज़ है ना नज़गुन, बड़ा खूबसूरत है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत देना चाहूँगी। शैतान के लिए जो बात आई कि वइम्मा यन्ज़गन्नका शैतान मिन शैतानी नज़गुन, ये दोनों एक ही लफ्ज़ है, देखेंगे अंदर आप, तो नून ज़ा ग़ैन इसका रूट है। नज़गुन कहते हैं उंगलियों की पोरों के साथ किसी को गुदगुदाना, गुदगुदी करते हैं ना, ऐसे बच्चों को भी बाज़ दफ़ा करते हैं, बाज़ बच्चे सोए तो आप उसको गुदगुदी करके उठाते हैं, इसको गुदगुदाना कहते हैं। अच्छा, शैतान हमें कैसे गुदगुदाता है, उकसाने के मानों में। आप बैठे होते हैं अच्छे भले, एकदम आपके दिल में ख्याल आता है, फिल्म देखो, अच्छा ये देखो, बस ये है गुदगुदी। शैतान आपको ना गुदगुदी कर रहा होता है, और अगर आप थोड़ा सा उसको आंखें दिखाएं ना, तो वो खामोश हो जाएगा। इसी तरह जो लफ्ज़ यहाँ है तौइफ, तोए हमज़ा फ़ा या तोए वाव फ़ा, दोनों इसके रूट है। तौइफ का लफ्ज़ी माना होता है चक्कर लगाने वाला, बस वसा इधर मुराद है, क्योंकि बार बार जहन उधर जाता है। फिर आप एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि यहाँ जो बात की गई कि वह इख्वान हम यमुद्दून हम फिल गई, कि उसके भाई उसको गुमराही में बुलाते हैं, तो यहाँ इख्वान कौन है, ये आपके हमारे दोस्त साथी करीबी करीब रहने वाले जो गलत काम करते हैं। आप देखिए, नेकी का काम जैसे टीम वर्क से होता है ना, इस तरह गुनाह का काम भी टीम वर्क से होता है। तो जो बाहर वाले लोग हैं उनसे इंसान बचे कैसे, अपने आप को मजबूत करे। किसी इंसान के ऊपर शैतान का उतना ज़्यादा गलबा होगा जितना इंसान अखलाकी तौर पे कमज़ोर होगा। हासिद बहुत जल्दी शैतान के हमले पे में आ जाता है। इसी तरह दुनिया से मोहब्बत करने वाला बंदा बहुत जल्दी शैतान के धोखे में आ जाता है। लोगों से लंबी उम्मीदें बांधने वाला शैतान के धोखे में आ जाता है। इसी तरह जल्दबाजी, अलाचिला तो मिन शैतान के लफ्ज़ हैं हदीस में, जल्दबाज शख्स बहुत जल्दी शैतान के धोखों में आ जाता है। इस तरह बुखल, जिसका दिल छोटा होता है ना, कंजूस, बहुत जल्दी शैतान के धोखे में आ जाता है। इसी तरह सहाबा करम माल को हलाकत की चीज़ समझते थे। इसी तरह मजहबी तासुब के ज़रिए शैतान हमारे अंदर घुसता है। हसन बसरी एक ताबई थे, कहते हैं कि इबलीस ने तरह तरह के तरीके सोचे, यानी वो चाहते हैं इंसानियत तबाह हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ है ना, वो मजहबी तासुब है कि मेरी जमात, मेरा गिरोह, मेरा फ़िरका अच्छा और दूसरे का बुरा। और एक और बात करके आगे चलते हैं कि जज्बात और ख्वाहिशात, इन दो दरवाज़ों से शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, ख़ास तौर पे आपकी उम्र में। जब बंदा यंग होता है ना, यूथ एज है, तो या इमोशंस की वजह से शैतान के हाथों में जाता है, बींग इमोशनल, हाँ, या ख्वाहिशात, डिज़ायर्स। आप देख लीजिए जितना फिक्शन और जितनी लव स्टोरीज हैं वो इन्हीं दो चीज़ों पर आती हैं। इसके बाद बिल्कुल आखिर अब सूरत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, बड़ा नेक बनता है, हमें बहुत कहता है, हमारे बुतों को, हमारे बुज़ुर्गों को बुरा भला कहता है, तो क्या है भला ज़रा आसमान से कोई निशानी ले आए। स्टाइल देखिएगा, व इज़ा लम तातिहिम बिआयतिन क़ालू लौ लजतबैतहा, जब इनके पास कोई मौजज़ा आप ना लाएं तो वो कहते हैं कि तूने खुद ही कोई मौजज़ा क्यों ना मुंतखब कर लिया। इजतबैत हक का जो लफ्ज़ है ना, जीम बा या इसका रूट है जिबा। जिबा कहते हैं पानी का हौज में जमा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की बात की तो ये सोचने लगे कि शायद अल्लाह के नबी हर फन मौला है। कहने लगे अच्छा ये इस सफ़ा पहाड़ को सोने का कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं नहीं ये कर सकता। तो कहते थे अच्छा जी, एक तरफ तो आपके ऊपर वही आती है, कुरान की आयतें आती हैं, तो क्या भला आप कोई और मौजज़ा या निशानी नहीं पेश कर सकते। का नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि क़लिन्नमा तबीउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब का मेरी तरफ से फ़ैसला होता है, जो मेरी तरफ वही होती है मैं उसको मान लेता हूँ। क्या पता चला कि मोमिन की सबसे बड़ी निशानी मुसलसल इताअत है। देखिए कभी कभी अल्लाह की बात सुननी माननी बहुत आसान है, मूड अच्छा होता है हम भी मानते हैं, रमज़ान में बहुत मान लेते हैं, हज और उम्रे में जाएँ तो मान लेते हैं, लेकिन इस्लाम की जो तो शान है ना, उसके आगे लिख लीजिए मुसलसल इताअत। ये मुझसे है और अल्लाह हमें इस कैफियत में रखे कि हम मुसलसल अल्लाह के मती रहें। यहाँ यही बताया गया कि मैं तो अत्तबियु मा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो अल्लाह की हर बात सुन के उसको मानता हूँ, और हाज़ा बसायरु मिन रब्बिकुम व हुदा व रहमतुल लिक़ौमिन यूमिनून, ये है दलाइल, तुम्हें मौजज़े चाहिए, ये कुरान की आयतें मौजज़े हैं, 1400 साल हो गए अभी तक ये नहीं बदले, हिदायत भी है इनमें, रहमत भी है, लेकिन शर्त क्या है कि लिक़ौमिन यूमिनून, ईमान शर्त है, ईमान लाए बगैर अगर इन चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, कई लोग थे वो पढ़ समझते भी थे, सुनते भी थे, अल्लाह के नबी की महफिलों में आते भी थे, फ़ायदा उनको भी कोई नहीं था होता। वजह क्या है? डिस्ट्रैक्टेड होते थे, फोकस नहीं होते थे। इसीलिए कुरान की हिदायत से फ़ायदा उठाने की बात क्या बताई, व इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। यहाँ कुरान की महफिल में आने का अदब बताया गया। देखिए, एक तो ना कुरान कहीं भी पढ़ा जा रहा है और आप गुजर रहे हैं, वो बात और है, एक ये कि आप कुरान सुनने आए बैठे। आप दो शरायत इसमें दे दी, नंबर एक फर्स्ट तमेओ, गौर से सुनो। एक लफ्ज़ होता है समिया, सीन मीम ऐन, सबको पता है सामे समी असमी, सुनना, लेकिन उसमें ते लग रही है, इस तमे तो गौर से सुनना, बाप बदल जाता है, यानी इस तमे हो, गौर से सुनो। गौर से सुनने के लिए क्या शर्त है? पूरी तवज्जो, फोकस्ड हो, और वन से टू, नून वन से टू क्या है, खामोश रहो, खामोशी से सुनो। आप देखिए कि एक शोर बाहर होता है, जैसे अगर हम इस वक्त पढ़ रहे हैं तो बाहर को शोर और हमें सुनना ना जाए, लेकिन एक शोर आपके अंदर है। आप में से कुछ लोग इस वक्त एक लफ्ज़ भी नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके अंदर कई ख्यालात की आंधियाँ आई हुई हैं। अभी यहाँ से उठ के इधर जाना है, अभी उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो भी खामोशी नहीं होती। कुरान उसी को कुछ देगा जो बंदा कुरान को सुनते वक्त और कुछ ना करे। सेलफोन बंद, कोई चैटिंग, कोई मैसेजिंग, कोई कॉपियों पे फूल बनाना, लिखना, ये सब नहीं होना चाहिए। यकीन करें, ये बड़ी अजीब चीज़ है। आप साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक हाथ में कोक और एक में ड्रिंक लेकर और एक में चिप्स लेके पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो इंसानी इलूम है, ये रूहानी इल्म है, ये अल्लाह की चीज़ है। दो खाने आप इकट्ठे नहीं खा सकते ना एक वक्त में। इस तरह आप कुरान का खाना, ये रूह की गजा है, और दूसरा खाना साथ नहीं खा सकते। दो बातें आप, मैं बोल रही हूँ साथ, अभी को और भी बोलना शुरू हो जाए तो किसी की भी नहीं पल्ले पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका अंदर कुछ और इस वक्त बोल रहा है और मेरी बातें भी कानों में पड़ रही हैं, कुछ नहीं मिलेगा। जब घरों से आ चुके, इतनी मेहनत और इतनी उम्मीदें लगा के घर वालों को आगे, तो यहाँ आके फर्स्ट दमे हो और अनसे तो खामोश रहो, फिर फ़ायदा होगा, फिर अहम होगा। कितनी ट्रिंक्विलिटी होती है ना, कितना सुकून मिलता है। कुरैश मक्का ने ये चाल चली थी कि जहाँ अल्लाह के नबी कुरान पढ़ाते हैं, ये वहाँ जाके तालियाँ बजाते, सीटियाँ बजाते, कहते ज़रा इनका असर कम हो। आज भी लोगों ने जुल्म किया कि कुरान की तालीम के साथ ऐसी ऐसी डिस्ट्रेक्शंस लोगों को दे दी कि लोग उसकी वजह से असल कुरान को भी नहीं ले आते। वस्कुर रब्बक फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहरि मिनल कौलि बिल गुदुव्वि वल आसाल। ए नबी, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, यानी कोई वक्त गफलत का ना हो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ, यानी हम्बल होते हुए आजिज़ हो जाओ, और ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ, और वला तकुन मिनल गाफिलीन, वला तकुन मिनल गाफिलीन, और उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। ये है खूबसूरत समय सी सूरज के आखिर में। सुबह शाम नमाज के वक्त भी हो सकते हैं, सुबह शाम की दुआएं भी हो सकती हैं, और इशारा भी है, मुहावरतन भी बोले गए कि हर वक्त आजजी हो, अल्लाह के मामले में बंदा बड़ा ना बने। गफलत वाले कौन है जो सोए रहे, पड़े रहे। हदीस में आता है, जो फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक सोया रहा, शैतान उसके कानों में पेशाब कर देता है। कभी बू आई आपको अगर फजर के लिए ना उठे तो? वला तकुन मिनल गाफिलीन। और आखिरी आयत है सूरत की, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहू व लहू यस्जुदून। और जो लोग, यानी मुराद है यहाँ फरिश्ते, आपके परवरदिगार के यहाँ मौजूद हैं, वो कभी इसकी बंदगी से अकड़ते नहीं, वो इसकी तस्बीह करते रहते हैं और इसके आगे सजदा करते रहते हैं। यानी ना करो तुम, ना मानो अल्लाह की बात, ना जाओ, ना करो सजदे, ना सुनो कुरान, अल्लाह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत फरिश्तों के लश्कर हैं, बड़ी मखलूकात है, रेत के जर्रे, चींटियाँ, मछलियाँ, सब उसके आगे झुकती हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर आपको याद करोगे, तुम्हारा फ़ायदा है। अब देखिए, इंसान किसको दिल में याद करता है? जिससे मोहब्बत हो। मोहब्बत होती है ना, आपकी ज़ुबान में ना चाहते हुए भी उसका लफ्ज़ होता है, चाहे डांट में हो, कभी प्यार में हो, कभी गुस्से में हो। अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, तो हम वक्त वक्त पे अल्लाह को याद करेंगे। और मार्फत की यही पहचान है कि आपकी ज़ुबान अल्लाह की याद से तर हो, कभी प्यार, कभी खौफ, कभी अस्तग़फिरुल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे बंदे की हस्ती में फुल मिल जाता है कि उसको लगता है कि हर वक्त मेरा रब मेरे पास है। यहाँ जो लफ्ज़ बिलगदू है, तुलुए फजर से लेके तुलुए शम्स के दरमियान का वक्त, यानी आप कह सकते हैं कि डॉन का जो वक्त होता है, सूरज सुबह जब फजर की नमाज होती है ना, तब से लेकर सूरज निकलने का वक्त, इसको कहते हैं गदूव। गदवतुन की जमा है गदूव। और असील कहते हैं असिर से मगरिब तक के वक्त को। सुबह शाम की दुआएं भी मुराद हैं, नमाज फजर और असर भी मुराद है। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कैसी होती थी, कहने लगी कभी ऊंची कभी नीची। यानी एक रिदम में नहीं पढ़ते थे, कभी ऊंची कभी नीची, यानी थोड़ी जोश वाली होती थी। एक न मौके पे नबी सल्लम रात को गुजरे तो अबू बकर सिद्दीक बड़े चुपके चुपके तहज्जुद पढ़ रहे थे। फिर आप हजरत उमर के पास से गुजरे तो वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे। आपने अगले दिन पूछा, अबू बकर आप इतनी आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? कहने लगे, जिसको सुना रहा था वो सुन रहा था, यानी अल्लाह मेरी आहिस्ता आवाज़ को भी सुनता। उमर से कहा, आप ऊंची क्यों पढ़ रहे थे? कहा, अल्लाह के नबी नींद को भगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। तो आपने फिर अबू बकर से कहा कि आप थोड़ा सा ऊंची और उमर आप थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा करें। हैं, ये है खीफा। ये जो खीफा है ना, असल में खौफ था। चलिए, यहाँ यह तो पूरी, यहाँ एक हल्की सी बात, और वो क्या कि ये कुरान पाक की का वो मकाम है जहाँ पहली दफ़ा सजदे तिलावत आ रहा है। अगर आप अपने कुरान में देखेंगे तो आयत के एंड पे आपको ऊपर लफ्ज़ सजदा दिख रहा है। 14 आयात हैं कुरान पाक की जिनको आयत सजदा कहते हैं। इन पर सजदा करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब भी है, पसंदीदा है। सजदा ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। वस्जुद वक्त अरेब, आगे भी हम पढ़ेंगे, सजदों से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह के नबी को एक साहबी ने कुछ कहा तो आपने कहा, अच्छा तुम सजदे करके अल्लाह से दुआ करो। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि वाज़ तो कहते हैं कि इसको बिल्कुल नमाज ही की तरह अदा करना है, वज़ू और सारी शरायत हैं। इमाम अबू हनीफा वाजिब भी करार देते हैं, लेकिन बाकी अहमे कराम कहते हैं कि नहीं, पढ़ना करना बहुत सवाब है, लेकिन अगर कोई कर नहीं पाता तो गुनाहगार नहीं होता। ठीक है, जहाँ मौका हो कर लीजिए, नहीं है तो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा सूरह नजम पढ़ी गई, आपने उस सजदे तिलावत पे सजदा किया। दोबारा एक और मौके पे पढ़ी गई तो आपने नहीं किया। तो जानते बूझते इनकार नहीं करना चाहिए, कर लें तो अच्छा है। फिर अगर वजू है, किबला रुख है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी हालात ऐसे हों कि आप ना कर सकें ये सब इख्तमाम, तो वैसे भी कर लें। इब्ने उमर के बारे में आता है कि वो सजदे तिलावत पे हल्का सा झुकते और सजदे की कैफियत बना के फिर उठ जाते। तो बहरहाल, बंदा मोमिन जब अंदर से झुका होता है तो उसको ज़ाहिर झुकना मुश्किल नहीं लगता। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब इब्ने आदम आयत सजदा पर सजदा करता है तो शैतान रोते हुए अलग हो जाता है और कहता है, हाय मेरी बर्बादी, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला तो इसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है। मुझे हुक्म मिला, मैंने इनकार किया और मेरे लिए दोजख है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सजदे करने वाला बना दे। और दुआ इसमें वही है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलकहु वसव्वरहु वशक्क समहु वबसरहु बिहौलिही वकुव्वतिही। याद कर लीजिए, छोटी सी दुआ है, नहीं है तो फिर आप सुभान रब्बी अल्लाह भी कह सकते हैं। फिर सवाल एक जहन में आपके आ सकता है, पीरियड्स हों तो क्या करें? करना चाहें तो कर लें, क्योंकि बस इसके लिए वजू की शर्त नहीं करार देते। जिस जिस बेस्ट वे पे कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अगर इख्तमाम कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन कम अज़ कम ये बात तो लेना कि जब भी सजदे का हुक्म होता है वो सजदे में जाते हैं, तो अल्लाह हमने अपनी हद तक मुमकिन जो था वो किया। फिर कभी कभी ऐसी आयत एक से ज़्यादा बार पढ़ी जा रही होती है ना, जैसे अब एक मौके पर हम तफसीर के लिए तर्जमे के लिए पढ़ें तो एक ही दफ़ा काफ़ी है। नमाज में इमाम साहब जब मस्जिद जमात करते हैं या तरावियों में पढ़ाते हैं तो इन आयात पे सजदा करते हैं, तो उनके साथ सजदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पूरी सूरत में हमने जो कुछ पढ़ा, सुना, सीखा, उस पर हमें अमल की तौफीक दे। शौर से कहें आमीन। कोई एक हुक्म याद है इस सूरत का जो आप लोगों से मुतल्लिक है? चलिए, आप लोग अगर एक छोटा सा होमवर्क ले लें, आप लोग पूरी सूरत को गो थ्रू करके इसमें जितने भी हुक्म है ना, इनकी लिस्ट बना के लाएँ। ठीक है, पूरी सूरत के डूज़ एंड डोंट्स को आपने लिस्ट में बना के गौर करना है उस पर कि क्या मैं इन पर अमल कर रही हूँ कि नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ल इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। तिलावत सुनेंगे।
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.